ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह आज सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव, गणपत राव जाधव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने योग सत्र को संबोधित करते हुए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग अपनाने वालों की संख्या विश्व में बढ़ रही है और इसकी उपयोगिता को लोग पहचान भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व नेताओं से बातचीत के दौरान वे सभी योग पर अक्सर चर्चा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग आज शोध का विषय बन गया है और इस पर कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना तथा प्रसारण सचिव संजय जाजू ने लोधी गार्डन में योग किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय कौशल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैश्विक मान्यता दिलाकर दुनिया भर में योग के प्रति उत्साही लोगों को योगाभ्यास करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के गोटिला गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रेमियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान का संदेश दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दो दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता की यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। श्रीमती शेख हसीना इस महीने के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आई थीं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज शाम बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि श्रीमती शेख हसीना की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके मार्गदर्शन की भी सराहना की। सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर सीमा निर्धारित कर दी है। यह कदम जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही इस कदम से उपभोक्ताओं को सुलभता से दालें उपलब्ध हो सकेंगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रमुख खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू है। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा दुकानों के लिए 5 मीट्रिक टन और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन है। यह सीमा 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल की जमानत पर अपने अंतिम आदेश के आने तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में वकील को सोमवार तक लिखित जवाब देने को कहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कोयला ब्लॉक नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत की। कोयला खनन नीति में सुधारों के बाद यह पहला मौका है जब कोयला ब्लॉकों का आवंटन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। इस दौर में 67 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। श्री रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और स्पर्धा बढ़ाने के लिए की गई है और इससे घरेलू स्तर पर कोयले का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। एक अन्य मैच में आज एंडीगा में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।